एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे नाम की गहराई में उतर रहे हैं जिसे सुनते ही शायद दिमाग में चमकीले सूट, वो खास हेयर स्टाइल और किंग ऑफ रॉक एंड रोल की गूंज उठती है। जी हाँ, बात एल्विस प्रेस्ली की।
हाँ, लेकिन हम उनकी कहानी को सिर्फ उनकी चमक दमक से नहीं देखेंगे, हम सहारा ले रहे हैं पीटर गर्लेनिक की लिखी दो कमाल की किताबों का, लास्ट ट्रेन टू मेम्फिस और कैलस लव।
बिल्कुल, ये किताबें मतलब सिर्फ उनकी शोहरत का बखान नहीं करती, ये उस इंसान एल्विस को समझने की कोशिश करती हैं, उनके सपने, उनके डर, उनके संघर्ष और हाँ, उनकी त्रासदियां भी।
सही कहा, गर्लेनिक एल्विस को सिर्फ एक म्यूजिक आइकॉन की तरह नहीं देखते, वो उस शख्स को देखते हैं जिसने अमेरिकी म्यूजिक को हमेशा के लिए बदल दिया, एक सांस्कृतिक तूफान खड़ा कर दिया। लेकिन साथ ही वो ये भी दिखाते हैं कि कैसे वो अपनी ही बनाई दुनिया में अपनी शोहरत के बोझ तले और बाहरी दबावों में उलझते चले गए। और ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, इसमें आज के लिए भी बहुत कुछ है।
हाँ, ये कहानी है टैलेंट की, शोहरत की, जो कभी वरदान लगती है कभी अभिशाप, आर्ट और कॉमर्स के बीच की वो शाश्वत लड़ाई और एक असाधारण जिंदगी का दुखद अंत।
गुरलिनिक एक बहुत बड़ा सवाल पूछते हैं और शायद यही इन किताबों का सार है कि वो 1950s के दशक का बिजली जैसा नौजवान, वो फ्रीडम और बगावत का सिंबल, वो कैसे, मतलब कैसे 1970s आते आते अपनी ही एक खोखली, नशे में डूबी हुई परछाई बनकर रह गया।
बहुत गहरा सवाल है।
और गुरलिनिक इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं, वो हमें अफवाहों और सनसनीखेज किस्सों से परे ले जाकर उस एल्विस से मिलवाते हैं जो कॉम्प्लेक्स था, हाँ जीनियस था, पर उतना ही इनसिक्योर भी था। चलिए सफर शुरू करते हैं।
बिल्कुल, शुरू से। तो शुरुआत होते हैं 1935, टूपेलो, मिसिसिपी। बेहद गरीबी, दो कमरे का घर, और एक बात जो शायद कम लोग जानते हैं, उनके एक जुड़वां भाई थे जेसी गैरॉन, जिनकी पैदाइश के वक्त ही मौत हो गई थी।
जी, और गुरलिनिक मानते हैं कि इसका असर एल्विस पर ताउम्र रहा। एक तरफ शायद ये एहसास कि वो स्पेशल हैं, वो जो बच गए, लेकिन दूसरी तरफ एक गहरा, कभी ना मिटने वाला अकेलापन।
और परिवार, माँ का जिक्र बहुत आता है।
हाँ, माँ ग्लैडिस उनकी जिंदगी का केंद्र थीं, उनका रिश्ता बहुत बहुत गहरा था, शायद जरूरत से ज्यादा ही क्लोज। पिता वर्नन के साथ थोड़ा अलग रिश्ता था, परिवार ने बहुत संघर्ष किया, लगातार घर बदलते रहे, वो अस्थिरता भी उनके स्वभाव का हिस्सा बन गई।
और संगीत, म्यूजिक कहाँ से आया उनकी जिंदगी में?
म्यूजिक तो जैसे हवा में था उनके लिए, वो उसे बस सोखते जा रहे थे। एक तरफ चर्च का वो जोशीला गॉस्पेल म्यूजिक, असेंबली ऑफ गॉड चर्च, उसकी रूहानियत,
हाँ,
दूसरी तरफ रेडियो पर ग्रैंड ओले ओपरी का कंट्री संगीत, और फिर शायद सबसे अहम, उनके घर के पास जो अश्वेत बस्तियां थीं वहां से आता हुआ ब्लूज संगीत, उसका दर्द, उसकी आत्मा।
तो ये तीनों चीजें, गॉस्पल, कंट्री, ब्लूज, उनके अंदर मिल रही थी।
बिल्कुल, अनजाने में ही सही, पर ये सब उनके अंदर पकड़ा था। फिर परिवार मेम्फिस आ गया बेहतर मौकों की तलाश में।
मेम्फिस, जो उस वक्त एक उभरता हुआ म्यूजिक हब बन रहा था।
जी, और यहाँ एक शर्मीला सा अपने में रहने वाला लड़का पहुंचता है, और यहीं से उनका असल संघर्ष और फिर वो विस्फोटक उदय शुरू होता है 1954 से 56 के बीच।
सन रिकॉर्ड्स और सैम फिलिप्स।
हाँ, वो लगातार सन स्टूडियो के चक्कर काट रहे थे। सैम फिलिप्स को तलाश थी एक ऐसे गोरे गायक की जो कालों की तरह गा सके, वो फील ला सके। एल्विस कोशिश करते रहे, कभी कभी तो लगता था हार मान लेंगे।
और फिर आया वो दिन, 5 जुलाई 1954। क्या हुआ था उस दिन?
स्टूडियो में कुछ खास हो नहीं रहा था, वो कुछ धीमे गाने, बैलेड्स वगैरह गा रहे थे, पर बात बन नहीं रही थी। सैम फिलिप्स भी शायद निराश हो रहे थे, और फिर अचानक ब्रेक के दौरान, या शायद बस यूं ही थोड़ी मस्ती में, उन्होंने आर्थर बिग बॉय क्रूडअप का एक पुराना ब्लूज गाना उठाया, दैट्स ऑल राइट, और उसे बिल्कुल अपने अंदाज में पूरी एनर्जी के साथ गाना शुरू कर दिया।
अरे वाह,
हाँ, गिटार पर स्कॉटी मूर और बेस पर बिल ब्लैक भी चौंके, पर फौरन साथ हो लिए। सैम फिलिप्स ने कंट्रोल रूम से सुना और चिल्लाए, ये क्या था, फिर से करो।
तो वो एक तरह का एक्सीडेंट था।
बिल्कुल, कोई प्लानिंग नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, बस एक लम्हा जब उनके अंदर का सारा म्यूजिक ब्लूज कंट्री गॉस्पेल की एनर्जी एक साथ बाहर आ गया। गर्लिनिक इसे शुद्ध अचेतन कलात्मक रसायन कहते हैं। रॉक एंड रोल का जन्म उसी पल हुआ।
कमाल है, इसके बाद तो सब बदल गया होगा।
अरे तेजी से, उनकी शुरुआती लाइव शोज में जैसे करंट दौड़ता था, लोग पागल हो जाते थे। खासकर उनका गाया ब्लू मून ऑफ केंटकी का वर्जन, हंगामा मच गया।
फिर वो नेशनल सीन पर आए, आरसीए के साथ कॉन्ट्रैक्ट।
जी, सैम फिलिप्स ने उनका कॉन्ट्रैक्ट आरसीए विक्टर को बेच दिया। बहुत बड़ी बात थी ये। फिर आया हार्ट ब्रेक होटल, पहला नेशनल हिट, और फिर टीवी पर दिखना शुरू हुए मिल्टन बर्ले शो, स्टीव एलन, और सबसे बड़ा एड सुलिवन शो।
लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था, विरोध भी हुआ उनके डांस को लेकर, उनके स्टाइल को लेकर।
बहुत ज्यादा। समाज का जो पुराना ढांचा था वो हिल गया। उनके डांस मूव्स को वल्गर कहा गया। नस्ली तनाव भी था, क्योंकि वो ब्लैक म्यूजिक गा रहे थे, जो उस समय बहुत बड़ी बात थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लोग इतना गुस्सा क्यों है।
और इसी बीच कर्नल टॉम पार्कर की एंट्री हुई।
हाँ, एक शातिर मैनेजर जिनका फोकस कला से ज्यादा हमेशा बिजनेस पर रहा। उन्होंने एल्विस को संभाला, या कहें कि कंट्रोल कर लिया।
और यहीं से कहानी उनके शिखर और फिर ढलान की तरफ बढ़ती है। 1957-58 वो बिल्कुल टॉप पर थे।
जी,
ग्रैसलैंड खरीदा, फिल्में हिट हो रही थी, लविंग यू, जेल हाउस रॉक, वो सुपरस्टार बन चुके थे। लेकिन इसी कामयाबी के बीच दो बहुत बड़े झटके लगे।
पहला
और सबसे गहरा, अगस्त 1958 में उनकी माँ ग्लैडिस की अचानक मौत। सिर्फ 46 साल की थी वो।
जैसा हमने कहा,
वो एल्विस की दुनिया का केंद्र थी। गुरलनिक लिखते हैं कि ये एल्विस की जिंदगी की सबसे बड़ी भावनात्मक तबाही थी, एक ऐसा जख्म जो कभी नहीं भरा। मतलब वो पूरी तरह टूट गए होंगे।
बिल्कुल, ऐसा लगा जैसे उनकी जिंदगी का सहारा ही छिन गया। वो असलियत से, दुनिया से जैसे कट से गए। उनका वो भोलापान, वो खुलापान कहीं खो गया।
और दूसरा बड़ा मोड़ क्या था?
उसी साल आर्मी में भर्ती होना और जर्मनी भेजा जाना, 1958 से 60 तक। ये एक तरह से पब्लिक इमेज सुधारने का तरीका भी था, पर इसने उन्हें उनके म्यूजिक से, उनके फैन से दूर कर दिया।
जर्मनी में क्या हुआ?
वो अच्छा सिपाही बनने की कोशिश कर रहे थे, पर अंदर से अकेले थे। उन्होंने अपने मेम्फिस के दोस्तों को वहां बुला लिया, वही जो बाद में मेम्फिस माफिया कहलाया। ये लोग उनके साथ रहते थे, पर कहीं ना कहीं उन्हें बाहरी दुनिया से और काट रहे थे।
और यही नशे की शुरुआत भी हुई।
हाँ, आर्मी में अलर्ट रहने के लिए एम्फेटामिन जैसी दवाएं दी जाती थी। यहीं से उनकी दवाओं पर निर्भरता की शुरुआत हुई, और यहीं उनकी मुलाकात 14 साल की प्रिसिला ब्यूल्यू से हुई।
1960 में जब वो लौटे, तो क्या वो पहले जैसा एल्विस थे?
नहीं, वो ज्यादा मेच्योर, ज्यादा कंट्रोल लग रहे थे, लेकिन शायद अंदर से ज्यादा सतर्क और बंद भी हो गए थे। और फिर शुरू हुआ हॉलीवुड का लंबा दौर, 1961 से 68 तक।
वो फिल्मों वाला दौर जिसमें उन्होंने बहुत सारी फिल्में की।
हाँ, करीब 30 फिल्में, और ज्यादातर एक ही जैसे फॉर्मूले पर बनी। कर्नल पार्कर का जोर था कि बस फिल्में बनती रहे, पैसा आता रहे, क्वालिटी की परवाह किसे थी। ब्लू हवाई, किस इन कजिन्स, लिस्ट लंबी है।
और एल्विस, वो खुश थे इससे?
बिल्कुल नहीं, वो बुरी तरह बोर हो चुके थे, निराश थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी कला का दम घुट रहा है। सोचिए, बाहर बीटल्स दुनिया बदल रहे थे, बॉब डिलन जैसे लोग नया संगीत रच रहे थे, और एल्विस हवाइयन शर्ट पहनकर गाने गा रहे थे।
ये तो फ्रस्ट्रेटिंग रहा होगा।
बहुत ज्यादा। वो एक सोने के पिंजरे में कैद थे। कर्नल का कंट्रोल पूरा था, और एल्विस शायद अब लड़ने की इच्छा या हिम्मत खो चुके थे।
लेकिन फिर आया 68 कमबैक स्पेशल, ये कैसे हुआ?
ये कमाल की कहानी है। उनका करियर नीचे जा रहा था। कर्नल पार्कर एक और वैसा ही हल्का फुल्का क्रिसमस टीवी शो प्लान कर रहे थे, लेकिन शो के डायरेक्टर स्टीव बाइंडर थोड़े अलग किस्म के थे। उन्होंने एल्विस को चैलेंज किया।
अच्छा?
हाँ, उन्होंने कहा, आप एल्विस प्रेस्ली हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने एल्विस को उनकी जड़ों की तरफ लौटने के लिए पुश किया, और एल्विस ने सालों बाद कर्नल के खिलाफ स्टैंड लिया। उन्होंने वो क्रिसमस वाला आइडिया रिजेक्ट किया।
और फिर?
और फिर जो हुआ वो इतिहास है। वो काले लेदर के सूट में स्टेज पर उतरे, बिना किसी तामझाम के, बस कुछ म्यूजिशियंस के साथ, और उन्होंने गाया। सालों की दबी हुई एनर्जी, वो पैशन, वो आग, सब कुछ बाहर आ गया। दुनिया ने फिर से असली एल्विस को देखा।
वाह, ये तो जबरदस्त वापसी रही होगी।
हाँ, इसे उनकी कलात्मक आत्मा का आखिरी महान संघर्ष कहा जा सकता है। इसने उनमें नया जोश भरा।
इसके बाद उन्होंने कुछ अच्छे गाने भी रिकॉर्ड किए।
जी हाँ, मेम्फिस लौटकर उन्होंने सस्पिशियस माइंड्स, इन द गेटो जैसे कुछ बहुत ही दमदार गाने रिकॉर्ड किए। लास वेगस में लाइव परफॉर्मेंस की जबरदस्त वापसी की। स्टेज पर वो फिर से किंग थे।
लेकिन ये दौर भी ज्यादा लंबा नहीं चला।
विडंबना देखिए, वेगास भी एक दूसरा जाल बन गया। लगातार शोज का थका देने वाला शेड्यूल, रचनात्मकता फिर से गायब होने लगी और दवाओं पर निर्भरता वो तेजी से बढ़ती गई।
और निजी जिंदगी, प्रिसिला से शादी, फिर तलाक।
हाँ, शादी हुई, बेटी लीसा मैरी हुई, लेकिन रिश्ता चला नहीं, तलाक हो गया। उनका अकेलापन और बढ़ता गया। आखिरी के साल मतलब 74 से 77 तक बहुत दुखद थे।
क्या हुआ उन सालों में?
स्टेज पर लड़खड़ाते हुए दिखते थे, वजन बढ़ गया था। ग्रेसलैंड जो उनका घर था वो एक तरह की जेल बन गया। वो शक और वहम में जीने लगे, कभी आध्यात्म की तरफ भागते, कभी दवाओं में डूब जाते। उनके आसपास के लोग भी उन्हें रोकने की बजाय शायद बढ़ावा दे रहे थे।
और फिर 16 अगस्त 1977,
हाँ, उनकी मौत। लेकिन गुरलैनिक साफ कहते हैं कि ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, ये एक धीमी, लगभग 2 दशक लंबी आत्मविनाश की प्रक्रिया का दुखद पर शायद अवश्यंभावी अंत था, जिसकी शुरुआत शायद उनकी माँ की मौत के साथ ही हो गई थी।
इस पूरी यात्रा को देखें तो एल्विस के मूल विचार, उनके कोर वैल्यूज क्या थे, क्या चीज उन्हें ड्राइव करती थी?
शुरू में देखें तो सबसे बड़ी चीज थी अमेरिकी संगीत की जड़ों से उनका गहरा जुड़ाव, ब्लूज, कंट्री, गॉस्पल, और उन्हें मिलाकर कुछ एकदम नया अपना बना देने की उनकी वो गजब की क्षमता। म्यूजिक उनके लिए सिर्फ गाना बजाना नहीं था, उसमें एक स्पिरिचुअल बात थी।
लेकिन फिर वो आर्ट वर्सेस कॉमर्स वाला एंगल आ गया।
हाँ, ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। जब वो अपनी कला के प्रति ईमानदार थे, अपनी इंस्टिंक्ट पर चलते थे, तब वो कमाल करते थे, सन रिकॉर्ड्स के दिन, 68 स्पेशल। लेकिन जब उन्हें और उनकी म्यूजिक को सिर्फ बेचने की चीज बना दिया गया, खासकर कर्नल पाकर के राज में, तो वो मुरझाने लगे।
और शोहरत का क्या रोल था? क्या उसने उन्हें अकेला कर दिया?
बिल्कुल, ये एक अजीब विरोधाभास है। जैसे जैसे वो ज्यादा मशहूर होते गए, उनकी दुनिया छोटी होती गई। वो अपने मेम्फिस माफिया जैसे लोगों से घिर गए जो हाँ में हाँ मिलाते थे। असल दुनिया से, सच्ची आलोचना से उनका संपर्क कट गया, और ये अकेलापन उनके अंदर के डर और असुरक्षा को और बढ़ाता गया।
असुरक्षा, ये शब्द बार बार आता है उनके बारे में, खासकर माँ की मौत के बाद, ऐसा क्यों?
लगता है माँ की मौत के बाद उनका भावनात्मक लंगर टूट गया। उनमें लोगों को खुश करने की बहुत ज्यादा इच्छा थी, शायद कॉन्फ्लिक्ट से बचते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी जिंदगी का कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे दिया, पहले कर्नल पाकर, फिर उनका वो घेरा। ये कंट्रोल का न होना भी उनके पतन का एक बड़ा कारण बना।
चलिए अब उन 3 खास मोड़ों पर फिर से नजर डालते हैं जिन्होंने उनकी कहानी बदली। पहला, सन स्टूडियो वाला वो दिन, 5 जुलाई 1954।
हाँ, सोचिए वो स्टूडियो, एक नर्वस सा लड़का, कुछ बन नहीं रहा, और फिर अचानक वो एक ब्लूज गाना उठाता है और बिजली कौंध जाती है। स्कॉटी बिल साथ आते हैं, सैम फिलिप्स पहचान लेते हैं कि कुछ खास हो रहा है। वो एक लम्हा था, अनजाने में हुआ, पर उसने सब बदल दिया।
ये इतना अहम क्यों था?
क्योंकि वो उनकी असली मौलिक आवाज का जन्म था, वो आवाज जिसने न सिर्फ म्यूजिक बदला बल्कि अमेरिकी कल्चर को हिला दिया। ये उनके उस अविश्वसनीय सफर की शुरुआत थी जहां वो सिर्फ एल्विस थे, अपने दिल की सुन रहे थे।
दूसरा मोड़ बहुत दुखद, माँ ग्लैडिस की मौत, अगस्त 1958।
जी, वो कामयाबी के शिखर पर थे, दुनिया उनके पैरों में थी, और तभी उनकी माँ, उनका सबसे बड़ा सहारा, अचानक चली गई। गुरलैनिक बताते हैं कि वो पूरी तरह टूट गए थे, उनका वो दुख कभी कम नहीं हुआ।
और ये निर्णायक क्यों बना?
क्योंकि इसने उनकी भावनात्मक नींव को हिलाकर रख दिया। वो सहारा चला गया जिसके लिए शायद वो ये सब कर रहे थे। उनके अंदर जो एक खालीपन आया, वो शायद कभी नहीं भरा। उनकी बाद की जिंदगी की कई परेशानियां, उनकी असुरक्षा, नशे की तरफ उनका झुकाव, कहीं ना कहीं इस गहरे जख्म से जुड़े थे।
और तीसरा मोड़, 68 कमबैक स्पेशल, वापसी।
हाँ,
वो हॉलीवुड की बोरियत से निकलना चाहते थे, कर्नल पार्कर उन्हें फिर उसी रास्ते पर ले जा रहे थे, पर इस बार उन्होंने हिम्मत दिखाई। स्टीव बाइंडर ने उन्हें जगाया और वो स्टेज पर लौटे काले लेदर में, वही पुरानी आग के साथ। उन्होंने साबित किया कि किंग अभी मरा नहीं है।
ये क्यों इतना जरूरी था?
क्योंकि इसने उनके करियर को बचाया, इसने दुनिया को और शायद खुद एल्विस को भी याद दिलाया कि उनके अंदर वो कलात्मक ताकत अभी बाकी है। ये उनकी आत्मा की जीत थी। अफसोस कि वो जीत लंबे समय तक कायम नहीं रह सकी, पर उस पल के लिए वो वापस आ गए थे।
एल्विस की कहानी ये सिर्फ एक म्यूजिक स्टार की कहानी नहीं है, इसमें हम सबके लिए कुछ सीखने को है, कुछ मानवीय सबक।
हाँ बिल्कुल, पहला तो वही आर्ट और कॉमर्स वाला। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो ये कहानी एक चेतावनी है। सिर्फ पैसे या शोहरत के लिए अपनी आत्मा का सौदा करना कितना महंगा पड़ सकता है।
और वो प्रसिद्धि का अकेलापन, ये सोचना भी अजीब है कि जिसके लाखों फैंस हों वो इतना अकेला महसूस करे। ये दिखाता है कि शोहरत आपको कैसे अलग थलग कर सकती है। जब आपके आसपास सिर्फ हाँ कहने वाले लोग हों तो आप सच्चाई से दूर हो जाते हैं। सच्ची दोस्ती, खरी आलोचना कितनी जरूरी है।
माँ की मौत वाला जो पहलू है वो अनसुलझे दुख और ट्रॉमा के असर को भी दिखाता है।
जी, ये बताता है कि अगर हम अपने गहरे जख्मों का सामना नहीं करते, उन्हें हील नहीं करते, तो वो हमें अंदर से खा सकते हैं। मेंटल हेल्थ कितनी जरूरी है। और नशे की लत, ये कोई नैतिक गिरावट नहीं, अक्सर दर्द से बचने का एक दुखद तरीका होती है।
एल्विस का माहौल भी उन्हें इससे निकलने में मदद नहीं कर पाया।
और शायद सबसे बड़ी बात प्रामाणिकता की, अपने असली सेल्फ से जुड़े रहना।
बिल्कुल,
बाहरी सफलता, पैसा, नाम, ये सब शायद कुछ देर की खुशी दें, पर असली संतुष्टि अंदर से आती है, अपने पैशन, अपनी क्रिएटिविटी, अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहने से। जब एल्विस वो थे तब वो चमकते थे, जब वो रास्ता भटके तो उनकी रोशनी कम हो गई।
उनका जीवन कहीं ना कहीं अमेरिकन ड्रीम के एक स्याह पक्ष को भी दिखाता है ना?
हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि सब कुछ पा लेना भी हमेशा खुशी की गारंटी नहीं होता। सफलता अपने साथ बहुत बड़ा दबाव, बहुत सारी उम्मीदें और गहरा अकेलापन भी ला सकती है। ये एक चेतावनी जैसी कहानी है।
तो इस पूरी बातचीत के आखिर में अगर तीन सबसे अहम बातें हमें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी?
देखिए, पहली बात, एक भावनात्मक स्तर पर एल्विस की माँ की मौत ने उन्हें भावनात्मक रूप से अनाथ कर दिया। ये वो केंद्रीय घाव था जो कभी भरा नहीं और जिसने उनकी बाकी जिंदगी को अनजाने में ही सही पर आकार दिया। ये याद दिलाता है कि बाहरी चमक के पीछे गहरा अकेलापन और अधूरी जरूरतें हो सकती हैं।
दूसरी बात,
दूसरी एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि ये है कि एल्विस की महानता सिर्फ बगावत या स्टाइल नहीं थी, उनकी असली प्रतिभा थी अमेरिकी संगीत की विभिन्न धाराओं, ब्लूज, कंट्री, गॉस्पल को सहजता से मिलाकर एक ऐसी मौलिक नई आवाज बनाना जिसने सांस्कृतिक बाधाओं को तोड़ा। वो एक सिंथेसाइजर थे, एक ब्रिज थे।
और तीसरी, एक यूनिवर्सल सीख।
तीसरी और शायद सबसे जरूरी सीख ये है कि बाहरी सफलता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंदरूनी खुशी की गारंटी नहीं देती। जरूरी है कि हम अपनी प्रामाणिकता, अपनी कलात्मक अखंडता और अपने आंतरिक मूल्यों को बाहरी दबावों और अपेक्षाओं से बचा कर रखें। खुद को खो देना ही शायद सबसे बड़ी त्रासदी है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।